ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे, उनके बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और सतगुरु के नाते उनके आज्ञाकारी फॉलोअर भी हैं। बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई का बहुत सरल पाठ दिया है और हम देखते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है उसका जो फाइनल पेपर है, उसका जो क्वेश्चन है, वो भी बाबा ने हमको अनेक बार बताया है। बाबा कहती हैं लौकिक दुनिया में बच्चों को अपने पेपर का समय पता होता है, पेपर कब होगा, लेकिन पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा वो पता नहीं होता। और बाबा के इस विद्यालय में इसके विपरीत है। हम बच्चों को ये मालूम है कि पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन समय कौन सा है वो मालूम नहीं है। इसलिए दुनिया वाले विद्यार्थी तो क्या करते हैं, समय का मालूम रहता है ना, तो दो चार महीने पहले से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, रटते हैं और निश्चित समय पे याद करके फिर भले भूल जाते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये काम दिया है कि हर समय याद रखो, क्या पता किस समय पेपर हो जाए, और हर समय की स्मृति के नंबर भी आपके जुड़ते रहते हैं। तो क्वेश्चन तो सबको याद है ना, सेकंड में अपने स्वरूप में स्थित होना, स्वर सेकंड में देह से न्यारा होना, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न को, इस अभ्यास को जो बहुत अच्छे से पक्का कर लेगा वो पास विद ऑनर होगा। हमारा पहला पाठ भी यही है और आखिरी पाठ भी यही है। इस पहले पाठ को बार बार मनन, चिंतन और बार बार अपने आंतरिक स्वरूप का दर्शन करते हुए हम पक्का कर सकते हैं। जैसे हम नए भाई बहनों को सुनाते हैं कि आप आत्मा हैं, नयों को तो सुनाते हैं और उनको कुछ बातें सुना देते हैं जिनके आधार पर, उनके लिए तो वो नई होती हैं, उनके आधार पर वो अभ्यास करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे उनको मनन के लिए नित्य नई नई पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि जब नई ज्ञान की बात मिलती है तो मनन भी अच्छा होता है, स्वरूप का अनुभव भी अच्छा होता है और उसमें मन भी लगता है। तो आत्मचिंतन का अर्थ क्या है, आत्मा के संबंध में नए नए तरीके से चिंतन करना। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हम कहीं खड़े हुए हैं, बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और एक भिखारी आके कहता है कि मैं दो दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। हमारी आंख उसको देखती है कि सचमुच ये आदमी भूखा है और हमारे कान उसके शब्द सुनते हैं, लेकिन अगर हम उसे कुछ खाने की चीज देंगे तो कैसे देंगे, कैसे देंगे? देने का काम तो हाथ करेगा। तो हाथ को ये बात किसने बताई कि तुम इसको कुछ दो? आंख बोलती नहीं है, मुख भी नहीं, कान भी नहीं बोलते हैं, तो हाथ तक ये संदेश कैसे पहुंचा? कौन सी शक्ति है जो आंख की बात को भी सुनती है, कान की बात को भी सुनती है और फिर उस संदेश को एक तीसरी कर्मेंद्री तक कन्वे करती है, और वो कर्मेंद्रिय उस कर्म को करती है। तो आत्मा सर्व इंद्रियों को जोड़ करके रखती है, कहीं से संदेश ग्रहण करती है और कहीं संदेश को प्रसारित करती है। इसी तरह से जैसे हम प्रतिदिन फ्रिज को देखते हैं, उसमें बिजली हो, कनेक्शन हो, तो उसमें अपन कोई भी चीज रखते हैं तो वो फ्रेश रहती है, लेकिन लाइट चली जाए या हम स्विच ऑफ कर दें तो उसमें रखी हुई चीजों का क्या होता है? रोज देखते हैं ना, दूध होगा तो बिगड़ जाएगा, सब्जी होगी तो बिगड़ जाएगी, कोई भी खाने पीने की चीज होगी या कोई भी चीज होगी। तो क्या ये शरीर भी बिल्कुल वैसा ही नहीं है? जब तक इसमें लाइट का कनेक्शन है, इसका हर अंग फ्रेश है, तरोताजा है, फेफड़ा, गुर्दा, मस्तिष्क, किडनी सब अपना अपना काम करते हैं। और जब लाइट का कनेक्शन निकल जाता है तो फ्रिज की चीजें एकदम खराब नहीं होती, लाइट का कनेक्शन जाने के बाद थोड़ी ठंडक रहती है, थोड़ा तो असर रहता है, फिर जब वो बिल्कुल ठंडक खत्म होगी तो खराब हो जाएंगी। तो ऐसे ही आत्मा के एकदम जाते ही शरीर का स्वरूप नहीं बिगड़ता है, लेकिन कुछ घड़ी बीतती जाएंगी, घड़ी बीतती जाएंगी और इसका स्वरूप भी कैसा होता जाएगा, हम सब जानते हैं ना। तो क्या ये भी एक प्रकार का चेतन फ्रिज नहीं हुआ, जो आत्मा रूपी बिजली के कनेक्शन से चलता है? तो रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी ऐसी हम बातें देखते हैं जिनका हम चिंतन करते करते बार बार आत्मा के स्वरूप में टिकने के अभ्यासी बन जाते हैं। हमको ऐसे ही एक बार किसी ने सुनाया था कि ये कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हमारे सेंटर पे आया, तो एक छोटी सी बहन ने पूछा कि आप कौन है, तो उसने कहा कि मैं फलाना अधिकारी हूं। तो बहन ने कहा कि माफ करना, मैंने आपका पद नहीं पूछा, मैं तो ये जानना चाहती हूं कि आप कौन है। फिर उसने अपनी जाति बताई कि मैं तो ब्राह्मण हूं। बहन ने फिर कहा कि माफ करना, मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन है। फिर उसने सोचा अब मैं और क्या बताऊं। फिर उसने अपनी एजुकेशन बताई, मैं बीई हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हूँ। तो बहन ने कहा माफ करना, मैंने आपकी शिक्षा भी नहीं पूछी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन है। उसके बाद उसने अपनी नागरिकता बताई, मैं भारत का रहने वाला हूँ, नागरिक हूँ भारत का। तो बहन ने कहा माफ करना, मैंने आपकी नागरिकता भी नहीं पूछी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन है। तो कितने सारे आवरण हैं हमारे ऊपर। जब हम संसार में आए तो आत्मा के रूप में आए, लेकिन उसके बाद कितने आवरण चढ़े, नाम का, रूप का, धर्म का, जाति का, शिक्षा का, पद का, संबंधों का, कितने सारे आवरण चढ़े। और जिस दिन आत्मा जाएगी, इन आवरणों को कोई नहीं पूछेगा, इन आवरणों को आधार देने वाली कौन, मैं आत्मा, मैं हूं तो ये नाम है, मैं हूं तो ये पद है, मैं माना मैं आत्मा, मैं ज्योति हूं तो ये रूप, नाम, पद, शिक्षा, धर्म, जाति सब कुछ है, लेकिन मेरे जाते ही इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो मैं कौन हूं, इन सब को धारण करने वाली चेतन सत्ता आत्मा हूं। इसी तरह से किसी ने हमको सुनाया कि घर में कोई बीमार था, तो उसको हमने कुछ गोली दवाई दी और उसको बिठाया, लेकिन बैठते ही उसके मुख से निकला कि मैं गया, और ऐसे कह करके वो निढाल हो गया। तो हमारे मन में प्रश्न उठा कि ये बात किसने कही, मैं गया, और ये कहने के बाद दोबारा उसमें कहने वाला बचा ही नहीं, तो ये शब्द किसने बोला, अपने जाने का इंडिकेशन दे करके वो चला गया। अब पूरा शरीर वही है, मुख भी है, जीवा भी है, लेकिन उसमें आवाज नहीं है। तो कौन अपने जाने का परिचय देकर के चला गया आत्मा। तो रोज के जीवन में बहुत ऐसी बातें देखते हैं जिससे हमको बार बार आत्मचिंतन करने की प्रेरणा मिलती है, और यही काम बाबा ने हम बच्चों को दिया है। बाबा कहते बच्चे आप साधारण नहीं हो, साधारण आत्माएं तो साधारण तरीके से चलती हैं, चीजों को वैसे ही देखती हैं जैसी वो हैं, जैसी वो स्थूल रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन हम साधारण नहीं है तो हमारी दृष्टि भी साधारण नहीं है, हमारा सोच भी साधारण नहीं है, हमारा बोल भी साधारण नहीं है, इसलिए हम चीजों को स्थूल रूप में नहीं देखते, भौतिक रूप में नहीं देखते, लौकिक रूप में नहीं देखते। हम उन चीजों के पीछे छिपे हुए रहस्य को देखते हैं, उन चीजों के भीतर छिपी हुई सत्यता को देखते हैं, उन चीजों के अंदर गुप्त अलौकिकता को देखते हैं, और उनको देखने का अभ्यास जब हो जाता है उसी को हम कहते हैं कि हमारी तीसरी आंख खुल गई। क्योंकि दो आंखों से हमें लौकिक रूप दिखता है और तीसरी आंख से हमें वो अलौकिक दिव्य पवित्र रूप दिखाई देता है। तो बाबा हम बच्चों को जितनी भी मुरलियां हैं उनमें बार बार यही सिखाता है कि आप बच्चों का बोल, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ असाधारण हो, विशेष हो, यादगार बनाने योग्य हो। तो वो तभी बनेगी ना जब हम इस तरह से चिंतन करेंगे, ज्ञान युक्त रीति से चिंतन करेंगे। इसलिए बाबा हमें एक और बहुत सुंदर शब्द देते हैं कि आप बच्चे न्यारे हैं, अल्लाह लोग हैं, दुनिया से न्यारे हैं। न्यारे का मतलब ये नहीं है कि हम कोई संसार से किनारा किए हुए हैं, लेकिन न्यारे का सबसे पहला अर्थ क्या है, इस देह से न्यारे हैं, इस संसार के आकर्षणों से न्यारे हैं और इंद्रियों से भी न्यारे हैं। थोड़े दिन पहले बाबा ने एक मुरली चलाई थी, उसमें कहा था बच्चे ये शरीर तो एक चीज की तरह से है, जैसे आप किसी भी चीज को उठाते हो, उसको यूज करते हो और उसके बाद उसे वापस रख देते हो, तो ये भी आपका गाउन है, ये भी आपकी ड्रेस है, ये भी आपका साधन है। गाड़ी को यूज किया, चलाया, उसके बाद खड़ा कर दिया, गाउन को पहना, उसके बाद जरूरत नहीं है तो रख दिया। तो इसी तरह से आपको ये अभ्यास हो जाना चाहिए कि ये एक चीज है, इसको जरूरत के समय यूज किया और फिर आत्मा इससे न्यारी हो गई। फिर बाबा ये भी कहती हैं कि संगम युग में मैंने आप बच्चों को खेल दिया है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो आप भी बच्चे ही हो। आध्यात्मिक रीति से तो हम सब आत्माएं या बाबा के छोटे छोटे बच्चे ही हैं। तो जैसे बच्चों को कहा जाता है कि दौड़ लगाओ और उस निशान को छू करके वापस आ जाओ, तो बाबा ने भी आप बच्चों को काम दिया है बुद्धि से दौड़ लगाओ, कहां तक, कभी परम धाम तक, कभी सूक्ष्म वतन तक दौड़ लगाओ। तो दौड़ लगाने के लिए कौन जाएगा, तो आत्मा जाएगी, दौड़ तो आत्मा लगाएगी, संकल्प से दौड़ लगाएंगे, दौड़ लगाओ, परम धाम को छुओ और वापस आ जाओ, उसके बाद दौड़ लगाओ, सूक्ष्म वतन को छुओ और फिर वापस आ जाओ। तो बाबा ने हम बच्चों को कितनी सुंदर पढ़ाई और कितना सुंदर खेल दिया है, खेल खेल में बाबा हमको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है। ओम शांति। अभी हम दो मिनट बाबा को याद करेंगे और दौड़ी पहनेंगे परम धाम तक और सूक्ष्म वतन तक, याद में ये खेल खेलेंगे। ओम शांति। तो हम न्यारेपन की बात कर रहे थे, पहली बात बाबा ने बताई इस शरीर से न्यारा, और दूसरा बाबा ने कहा कि संसार में रहते हुए संसार की चीजों, पदार्थों, वस्तुओं, वैभवों से भी न्यारा। जैसे नट तार के ऊपर चलता है तो लोग उसको बड़े आकर्षण से देखते हैं, कई लोग बड़े लंबे चौड़े रास्ते पे चलते हुए भी ठोकर खा लेते हैं, और वो पतले से तार पर भी बड़ी सफलता के साथ चलता है तो लोग उसको देखने जाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में संतुलन है। तो ऐसे ही बाबा कहती हैं, अगर कोई संसार में रहे और संसार में फंस जाए तो वो कोई महिमा योग्य नहीं है, या कोई फंसने से डर करके इसे छोड़ के चला जाए वो भी कोई महिमा योग्य नहीं है, लेकिन इसके बीच में रहते हुए भी इससे न्यारा रहे ये एक बहुत बड़ी कला है, ये एक बहुत बड़ा संतुलन है, और बाबा हमें वही संतुलन सिखाते हैं जिसके कारण ही हम दर्शनीय मूर्त बनते हैं, जिसके कारण ही लोग हमें आश्चर्य से देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कई युक्तियां बताई हैं ऐसा करने के लिए, सरल तरीका। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे संसार में रहते हुए आपको कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधना है। कर्म करते हुए कई बातें आती हैं, मान भी होता है, अपमान भी होता है, प्राप्ति भी होती है, घाटा भी होता है। कर्म करते हुए प्रेम भी मिलता है, कभी नफरत भी मिल जाती है। कर्म करते हुए कई अपनेपन से भरे हुए लोग मिलते हैं, कई परायेपन से भरे हुए लोग मिलते हैं। कर्म करते हुए कई बार मनपसंद कर्म मिलता है, और कई बार जिस कर्म को नहीं किया, जिसकी आदत नहीं, ऐसा कर्म भी सामने आ जाता है। कई बार जानी पहचानी जगह मिलती है, कई बार अनजानी जगह मिलती है। तो कर्म करते हुए इस तरह की बातें और परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बाबा ने कहा कि इन सब के बीच में रहते हुए भी आपकी स्थिति एक रस रहे। तो ये एक बहुत बड़ी कला है ना, कोई ऊंचे नीचे रास्ते पे चले और बहुत सही चले तो लोग कहेंगे देखो इसमें चलने की कितनी कला है। तो ऐसे ही कोई विभिन्न परिस्थितियों के बीच में रहे लेकिन अपने मन को एक रस रखे तो ये भी तो बहुत बड़ी कला है। न मन हिलता है, न मन डोलता है, न उसमें कोई चिंतन चलता है, न घृणा आती है, न इच्छा आती है, मन एक रस स्थिति में रहता है। इसके लिए बाबा ने हमको विधि बताई कि जो भी बात बीते उसको बिंदु लगाते जाओ, और अगर बहुत धनवान बनना, अमीर बनना है तो उसका तरीका बिंदु लगाना है। जैसे कोई नाटक देखता है तो नाटक देखने वाला जो दृश्य चला गया उसको रिपीट नहीं करता मन में, क्योंकि उसको रिपीट करेगा तो आगे का दृश्य ठीक से नहीं देख पाएगा। तो वो सोचता है पिछला गया, अभी मैं जो सामने है उसको देखूं। तो बाबा भी कहते बच्चे आप दो काम एक साथ करते हो, सृष्टि नाटक को देखते भी हो और सृष्टि नाटक में पार्ट प्ले भी करते हो। तो अगर आप कल की बात याद करेंगे या एक घंटा पहले की बात का चिंतन करेंगे तो इस समय जो दृश्य है उसको आप नहीं देख पाएंगे, उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो बात बीती उसको फुल स्टॉप लगाया, और जो बात सामने आ रही है उसमें संपूर्ण ध्यान को एकाग्र किया। अगर हम ऐसा करेंगे तो निंदा, स्तुति, उतार चढ़ाव इन सब का चिंतन नहीं चलेगा। दूसरा बाबा कहती हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है। संसार में रहते हुए अगर आप युक्ति से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। युक्ति का मतलब चालाकी नहीं होता, युक्ति का मतलब होता है सही विधि। जैसे हम कहते हैं विधि से सिद्धि मिलती है, तो ऐसे ही युक्ति से मुक्ति मिलती है। कई हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको हम युक्ति से हल करते हैं, अलौकिक विधि अपना करके उनको हल करते हैं। फिर बाबा ने कहा, संसार में रहते हुए मेहनत मुक्त बन करके रहो। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए हर असंभव बात भी संभव है। बाबा ने कहा असंभव शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होता है। तो अगर हमको बार बार मेहनत लगती है, इसका मतलब क्या है? हम बार बार संसार में फंसते हैं, फिर निकलते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर निकलते हैं। तो फंसने और निकलने में तो मेहनत लगेगी ना, लेकिन मेहनत मुक्त का अर्थ क्या है? वो फंसता ही नहीं है जो उसे निकलने की मेहनत करनी पड़े। इसलिए अगर हमको संसार में रहते हुए न्यारा और प्यारा बनना है तो बुद्धि को कहीं भी उलझाना नहीं है, फंसाना नहीं है, जो फिर निकालने की मेहनत करनी पड़े। इसलिए मेहनत मुक्त रहना है। फिर बाबा ने कहा, संसार में रहते हुए इच्छा मात्रम अविद्या बन करके रहना है। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, सब चीजों की लंबाई चौड़ाई है, लेकिन इच्छाओं की तो कोई लंबाई चौड़ाई भी नहीं है। आज आप उनका जितना माप करेंगे, कल वो उससे बाहर निकल जाएगी। और बाबा ये भी कहते हैं कि इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। दुनिया में देखो, जितने भी हम पाप कर्म सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई इच्छा ही होती है, कोई ना कोई बेलगाम तृष्णा होती है, जिसके कारण मनुष्य पाप कर्म करता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इच्छा जीत बना दिया। हम सबको अगर है तो अंदर में शुभ कामनाएं हैं, लेकिन इच्छाएं नहीं है। और शुभ कामनाएं अपने लिए हो या दूसरे के लिए, वो तो शुभ है, उनका परिणाम भी शुभ है। लेकिन इच्छा चाहे अपने प्रति चाहे दूसरे के प्रति, उसका परिणाम तो अशुभ ही है। तो बाबा ने कहा, आपकी जो सर्वोच्च शुभ कामना थी कि हमें भगवान मिले, सर्व प्राप्तियों का दाता मिले, सर्व भंडारे भरपूर करने वाला मिले, जो सबसे ऊंचा, सबसे ज्ञानी, सबसे शक्तिशाली, वो हमें मिल गया, तो बाकी छोटी मोटी इच्छाएं हम क्यों पैदा करें? जैसे कोई राजा का बच्चा, उसके सामने राजा आ जाए, किसी व्यक्ति के सामने राजा आ जाए और वो कहे कि भी तेरे को क्या चाहिए, तो अगर वो ये कहे कि मुझे बादशाह ही दे दो, तो राजा तो बादशाह ही भी दे सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इतना समझदार नहीं है तो कोई छोटी मोटी चीज मांगेगा, भाई मेरी गली साफ नहीं है, मेरी गली साफ करवा दो, हैं, या मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे ये चीज दे दो, तो लोग हंसेंगे ना, कहेंगे देखो इतना बड़ा राजा सामने आया और इसने मांगा भी तो क्या मांगा। तो भगवान जो हमें सतयुग की बादशाही दे रहा है, हमारे पिछले सारे पाप कर्मों के खाते को भस्म कर रहा है, हमें स्वस्थ तन, उजला मन, अखुट धन और बहुत ही प्रिय संबंध दे रहा है। उस भगवान को पा लेने के बाद हम ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं जिनका अंत बुरा ही होगा प्रकट करें, तो हम भी हंसी के पात्र बनेंगे। भगवान मिलने के बाद भी देखो इसने क्या इच्छा प्रकट की, देखो इसके मन में कैसी इच्छाएं उठ रही हैं। इसलिए बाबा ने कहा, आप बच्चों को सांसारिक रूप से जो इच्छाएं हैं, उनके लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अगर हमको संसार से न्यारा रहना है, तो बाबा ने हमें एक बात और बताई, कर्म भोग भी आपको आकर्षित न करे। शरीर है तो शरीर के साथ इसकी कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो जुड़ी ही रहती है, कभी किसको कुछ होगा, कभी इसको कुछ होगा। तो बाबा ने कहा, कर्म भोग भी कर्म योग का साधन बन जाए, वो भी सेवा के निमित्त बन जाए। आप दो काम आप एक साथ करें, एक तो कर्म भोग के द्वारा पिछला हिसाब चुकतू करें, और कर्म भोग में भी सेवा करके आगे पुण्य का खाता जमा करें। तो अगर हम दो काम एक साथ कर सकेंगे तो हमारी डबल कमाई होगी। फिर बाबा कहती हैं कि कर्म करते हुए कर्म योगी फरिश्ता बन करके रहो। फरिश्ता बनना है लेकिन कर्म योगी फरिश्ता। दुनिया में तो लोग कहते हैं कर्म ही धर्म है, ये स्लोगन लिखा रहता है, लेकिन कर्म धर्म थोड़े है। जिस कर्म को हम भगवान को भूल करके करते हैं वो कर्म धर्म हो ही नहीं सकता। जिसमें आत्मा की स्मृति नहीं, परमात्मा की स्मृति नहीं, देह अभिमान में जो कर्म किया जा रहा है तो उस कर्म में तो कई नेगेटिविटी जाएंगी, स्वार्थ आएगा, तेरा मेरा आएगा, दिखावा आएगा, कामनाएं पैदा होंगी, परचिंतन होगा, मैंने किया, मेरा किया हुआ है, ये अहंकार आएगा। इसलिए कर्म धर्म नहीं है लेकिन कर्म योग धर्म है। कर्म योग में टिक करके हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे धर्म के खाते में जाता है, पुण्य के खाते में जाता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जैसे बिना आत्मा के शरीर की कीमत नहीं, ऐसे बिना योग के कर्म की भी कीमत नहीं। कर्म आपने कितना भी ऊंचा किया लेकिन बिना योग के किया उसका फल नहीं निकलेगा। तो हमको कर्म करना है लेकिन बाबा की याद में, और कर्म करके बाबा को अर्पित कर देना है। मैंने किया नहीं, बाबा ने मुझ आत्मा का भाग्य बनवाया, बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया, जिसको हमारी दादी जी कहती हैं निमित्त बनने का भाग्य मिला। ये निमित्त बनने का भाग्य हमें नम्रचित बनाता है, निरअहंकारी बनाता है। फिर बाबा कहती हैं कर्म करते हुए निर्माण रहो और निर्माण रहो। निमित्त, निर्माण और निर्माण, ये तीन शब्द। निमित्त का अर्थ तो हमने समझा, करण करावन हार बाबा हैं और मैं आत्मा निमित्त करण हार हूं। तो जब बाबा मेरी बैकबोन है, बाबा मेरा मार्गदर्शक है और बाबा ही मेरे कर्मों के लिए जिम्मेवार है। बाबा हम बच्चों की कर्मों की जिम्मेवारी लेता है, अगर हम याद में कर्म करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी लेता है, हमारे जीवन की जिम्मेवारी लेता है। तो फिर मैं आत्मा चिंता क्यों करूं? और निर्माण माना मैंने कितना भी अच्छा कर्म किया लेकिन जैसे बाबा कहते हैं मैं इतनी ऊंची अथॉरिटी होते हुए भी निरअहंकारी हूं। तो आप बच्चों को भी निरअहंकारी बन करके रहना है। कहती है नम्रता दिव्यता की चोटी है। ज्ञानी व्यक्ति का पहला लक्षण उसकी नम्रता है। हमारे अंदर ज्ञान का कितना प्रकाश है इस बात का प्रतीक ये है कि हम कितने नम्र हो सकते हैं, कितने झुक सकते हैं, कितने मोल्ड हो सकते हैं, कितना समायोजन कर सकते हैं, अपनी बात को कितनी नम्रता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हमारे ज्ञान की प्राकाष्ठा की निशानी है। जितनी जितनी ज्ञान की प्राकाष्ठा होती जाती है उतना उतना शब्दों में, कर्मों में, व्यवहार में झुकने का भाव, नम्र बनने का भाव बढ़ता जाता है। और फिर बाबा कहती हैं निर्माण। निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव। तो हम सब बाबा के बच्चे तो नव निर्माण करने वाले हैं। जैसे बाबा कई बार कहती हैं कि एक डॉक्टर है, उसका काम है बीमारी को दूर करना। इसी तरह से आग बुझाने वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, उनका काम है आग बुझाना। इसी तरह से वकील होता है, वो भी झगड़ों के संबंध में राय देता है उनको निपटाने का, या जज है वो झगड़े निपटाने का काम करता है। तो सबके अपने अपने ऑक्यूपेशन होते हैं और वो अपने ऑक्यूपेशन को कभी भी नहीं भूलता। बिजनेसमैन होता है वो अपने ऑक्यूपेशन को नहीं भूलता, घर में भी आएगा तो भी उसको स्मृति रहेगी कि मैं ये लेन देन किया या कल मुझे ये लेन देन करना है। तो जैसे ये लोग अपने ऑक्यूपेशन को नहीं भूलते, ऐसे आप बच्चे भी मेरे साथ विश्व नव निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। आपका ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, विश्व के नव निर्माणकारी, विश्व के परिवर्तनकारी। तो अगर आपको ये ऑक्यूपेशन हमेशा याद है तो आप कभी भी डिस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्शन का काम माना नेगेटिव थॉट या विशियस थॉट, अगर ये हमारे अंदर आए तो समझो हम डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो क्या हम दोनों काम एक साथ करेंगे? क्या आग बुझाने वाला कभी आग लगाने का भी काम करेगा? वो केवल एक ही काम करता है, बुझाने का। तो हम बच्चों को भी केवल कंस्ट्रक्शन का काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं करना है। डिस्ट्रक्शन करने वाले और बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो गिने चुने थोड़े से बाबा के बच्चे हैं। तो अगर हम अपनी संपूर्ण शक्ति कंस्ट्रक्शन में लगा देंगे तो बाबा का कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। तो बाबा ने संसार में रहते हुए हमें अनेक मर्यादाओं में बांध दिया। उन मर्यादाओं के बंधन में बंद करके हम अनेक उच्छृंखलताओं से छूट गए और रावण की अनेक जंजीरों से छूट गए। भगवान का बंधन बंधा और बुराई का बंधन छूट गया। और बाबा के बंधन में बंद करके संसार में रहते हुए भी कमल समान न्यारे और प्यारे बन गए। कमल को अपनी जड़ें तो कीचड़ में ही रखनी पड़ेंगी, अगर वो जड़ों को वहां से निकाल ले तो वो सूख जाएगा। इसलिए जड़ें रखना तो जरूरी है, लेकिन अपनी बुद्धि को ऊपर कर लेता है वो। तो बाबा ने हम बच्चों को भी यही तरीका सिखाया, आपके पांव फर्श पे लेकिन आपका चिंतन बहुत ऊंचा। कितना ऊंचा? जितनी ऊंचाई तक साइंस का कोई यंत्र नहीं पहुंच सकता, कोई पंछी नहीं पहुंच सकता, यहां तक कि मनुष्य की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती, इतने आपके विचार ऊंचे, आपकी बुद्धि ऊंची, आपका चिंतन ऊंचा। और फिर बाबा कहते हैं शरीर से न्यारे, संसार से न्यारे, और तीसरा इन इंद्रियों से भी न्यारे, क्योंकि मन आत्मा और इंद्रियों के बीच में एक पुल का काम करता है। अगर ये मन ही मन मनाभव हो गया तो ना इंद्रियों को उलझाएगा और ना इंद्रियों के माध्यम से उलझेगा। इसलिए बाबा ने कहा कुछ समय निकाल करके अपने आप से बातें करो। हमने 63 जन्म यहां तक कि सतयुग से लेकर के अब तक दूसरों से बहुत बातें की हैं, लेकिन ये केवल एक जन्म है जब हम अपने आप से बातें करते हैं, जिसको बाबा ने हमें अनेक तरीकों से बताया है कि अपनी इंद्रियों का दरबार लगाओ, उनका हालचाल पूछो। आप उनका हालचाल पूछेंगे तो वो आपके नियंत्रण में रहेंगे। जैसे अपनी आंखों से आप बात करो, इनको कहो कि आप तो एक महान आत्मा की आंख हैं। और हम कहते हैं कि विष्णु के हाथ में 4 अलंकार हैं, शंख चक्र गदा पद्म। बाबा कहते हैं बच्चे ये अलंकार देवताओं के नहीं है, क्योंकि देवताओं को तो ना शंख बजाना है, ना सुदर्शन चक्र घुमाना है, ना गदा से किसी बुराई को जीतना है, ये अलंकार आपके हैं। तो ऐसे ही जैसे हम देवताओं के लिए कहते हैं कमल नयन, कमल करण, कमल हस्त, कमल पाद, कमल मुख, तो ये भी किसके हैं? क्या देवताओं के नयनों को हम कमल नयन कहेंगे? सतयुग में तो कीचड़ होती ही नहीं है जहां उससे न्यारा रहने की बात हो। तो कमल नयन वास्तव में किसके हैं? संगम युग में हम बच्चों के हैं, जो कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान है। संसार में इतनी कीचड़ जैसी चीजें हैं, लेकिन उनको न देख करके हमारे नयन किसको देखते हैं? शुद्धि को देखते हैं, पवित्रता को देखते हैं, काम की चीज को देखते हैं। तो अपनी आंखों को आप कह सकते हैं, मन ही मन बात कर सकते हैं कि तुम तो कमल नयन हो, तुम्हारा ही तो गायन है, मंदिरों में तुम्हारी इतनी महिमा है, तो तुम ये क्या देख रही हो? इस शरीर को देखना, इस चमड़ी को देखना, इस संसार को देखना जो मृत पराये है, नहीं, तुमको इसमें नहीं डूबना। तुम तो कमल के समान न्यारी और प्यारी हो, तुमको तो केवल पवित्रता की बातें ही देखनी है। इसी तरह से अपने कानों से बात करो, तुम भी कमल करण हो, तुमको क्या सुनना है? 63 जन्म तो बहुत कुछ सुना, और सुन सुन करके अंदर का सारा जो स्थान था वो व्यर्थ बातों से भर लिया, लेकिन अब भगवान ने तुमको कमल करण का वरदान दिया है। तुम केवल छंटी हुई, चुनी हुई अच्छी बातों को अंदर ले जाओ। इसी तरह से मुख को सिखाओ कि तुम मुख कमल हो, तुम्हारे अंदर से तो मोती रत्न बाहर निकलने चाहिए। जैसे बाबा रूप बसंत की बात सुनाते हैं, एक भाई सुंदर बहुत था और दूसरा भाई जब बोलता था तो उसके मुख से रत्न निकलते थे। तो ये मिसाल बाबा इसीलिए देते हैं कि आप बच्चे ही वो रूप बसंत है, आप बच्चों का मुखी मुख कमल है, तो इस मुख से जो भी निकले वो रतन ही निकले, मोती ही निकले, ऐसा शब्द निकले। कई बार कहते हैं ना, अरे इसने तो लाखों की बात कह दी, तो ऐसी बातें मुख से निकले जो लाखों की हो, करोड़ों की हो, कीमती हो, जिन्हें लोग बार बार सुनना चाहें, दूसरे को संबोधन भी ऐसा दे जो सुन करके उसको शांति मिले, तसल्ली मिले, उसके अंदर उमंग आ जाए, उसकी मुरझाई हुई आत्मा खिल जाए, उसको कोई राय दे तो भी ऐसे दे उसकी उलझने खत्म हो जाए, उसको एक नया रास्ता मिल जाए। अगर उसके साथ बैठ करके कोई चर्चा और चिंतन करें तो भी ऐसा करें कि वो यादगार बन जाए, वो याद करे कि किसी ने मुझे उस चर्चा में ये बात सुनाई थी जिसको सुन करके मेरे तो जैसे बंद कपाट खुल गए, ऐसी बात उसने मुझे दी, ऐसी कीमती बात उसने मुझे दी। तो बाबा ने हम बच्चों को मुख कमल दिया है, कमल तुल्य बातें इसमें से निकले। और इसी तरह से कमल हस्त, अब ये हाथ भी न गंदी चीज को छू सकते हैं, न ले सकते हैं, जैसे हाथ दो काम करता है, किसी को मल्लम भी लगा सकता है, दुआ भी दे सकता है, कई पोजें साथ के आशीर्वाद दे सकता है, दुआ दे सकता है, किसी को कोई चीज दे सकता है, देने का काम भी हाथ करता है, और वरदान भी दे सकता है, वरदानी रूप भी है। तो बाबा ने हम बच्चों को, दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो हाथों से भी मांगते हैं और हाथ न पसारे तो बुद्धि से भी मांगते हैं, जिसको कहते हैं स्थूल भिखारी और सूक्ष्म भिखारी। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि ना तो आपको ये हाथ पसारना है और ना बुद्धि रूपी हाथ पसारना है, बुद्धि से भी कोई चीज नहीं मांगनी है, क्योंकि आप दाता के बच्चे दाता हैं। तो ये कमल हस्त है, इससे हमको जो भी कर्म करना है वो कमल तुल्य हो, यादगार बने। और बाबा हम बच्चों को तो ये कहता है कि आप मेरे राइट हैंड हो। अगर किसी को कोई चीज किसी को देनी हो तो वो कैसे देगा? हाथ के द्वारा ही देगा ना। और अगर उसका हाथ ठीक ना हो तो कैसे देगा? तो बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे राइट हैंड हो, और दुनिया को मुझे जो भी कुछ देना है वो आपके माध्यम से देना है। तो आपका मन बुद्धि संस्कार स्थिर है, आप कर्मेंद्रियों के राजा हैं, आप आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, तो मैं आपके द्वारा दूसरों को कुछ दे सकता हूँ। लेकिन आप ही हलचल में हैं, तो मैं आपको दूंगा तो वो चीज भी हलचल में आ जाएगी, वो वरदान भी हलचल में आ जाएगा, फिर वो दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेवारी है, हमें बाबा के राइट हैंड बनकर, राइट हैंड का कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने आप को अचल, अडोल और स्थिर बनाना है, ताकि भगवान हमें यूज कर सके। भगवान हमारे द्वारा अन्य आत्माओं की आशाएं पूर्ण कर सके। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को दी है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जो जिम्मेवारी को निभाता है वो महिमा का भी पात्र बनता है, इनाम का भी पात्र बनता है। और भगवान की दी हुई जिम्मेवारी को निभाना ये तो बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं भगवान के लिए उंगली लगाई तो वो भी यादगार बन गई, जरा सा भी कार्य किया तो उसकी भी बड़ी भारी महिमा हो गई। रामायण में सुनाते हैं वो पत्थर जब पुल बनाया तो एक गिलहरी ने भी थोड़ी सी मिट्टी उठा करके रखी थी तो उसको भी लोग बहुत सम्मान देते, उसको भी याद करते, वो कितनी भाग्यशाली थी। भगवान के आदेश से उसने भी थोड़ी सी मदद की, गिलहरी कितनी छोटी है क्या कर सकती है, और किया भी कि नहीं किया। लेकिन हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें तो पूरी अपॉर्चुनिटी मिली है। बाबा ने अपनी सारी जिम्मेवारी, सारे कर्तव्य की जिम्मेवारी हम बच्चों को दी है तो हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान ने हम पर विश्वास किया, हमें चुना, अपने दिल की बात सुनाई और फिर अपनी सारी जिम्मेवारी हमें दी। इतना विश्वास परमात्मा ने हम पर किया, अहो भाग्य, बहुत ऊंचा भाग्य हमारा, भगवान के विश्वास पात्र बने हम। तो इस नशे में भी हम रहें तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। बाबा कहती हैं बच्चे किसी मनुष्य से न्यारा नहीं बनना, किसी चीज से न्यारा नहीं बनना, लेकिन पुराने स्वभाव संस्कार से, शरीर से, आकर्षण से और दुनिया के सहारों से न्यारा बनना है। हमारा सहारा भी एक है, हमारे लिए आकर्षण भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है, हमारा लक्ष्य भी एक है। तो बाबा ने कहा अपने स्वरूप की स्मृति, बाबा की स्मृति, अपने लक्ष्य की स्मृति, अपने घर की स्मृति, अपने लक्षणों की स्मृति, इन स्मृतियों में टिक करके रहो तो न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति।